माता जी तस्या, ये अंग्रेजी में है तो मैं अंग्रेजी पढ़ता, बाद में हिंदी में। ऑफ हिम महाराज दशरथ, महाराज दशरथ का। अपी आल्सो भी, भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान ऐसा ऑल ऑफ देम, ये सब साक्षात डायरेक्टली ब्रह्ममय, द सुप्रीम ब्रह्मन, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, हरि ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान हरि, अंश अंशेना बाय एंड एक्सपेंशन ऑफ ए प्लेनरी पोर्शन, अंश और अंशांश के साथ। चतुर्धा बाय फोर फोल्ड एक्सपेंशन, चार प्रकार से। आगत एक्सेप्टेड, प्रकट हुए। पुत्रत्वम सनहुड, पुत्रत्व को। प्रार्थितः बीइंग प्रेड फॉर, प्रार्थना किए जाने पर। सुरभि बाय द डेमी गॉड्स, देवताओं के द्वारा। रामः लॉर्ड रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र। लक्ष्मणः लक्ष्मण, भरतः भरत। शत्रुघ्न शत्रुघ्न, इति दस, इस प्रकार। संज्ञया बाय डिफरेंट नेम, विभिन्न नामों के द्वारा। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय डिवाइन ग्रेस इस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। Being prayed for by the demigod, the supreme personality of Godhead, the absolute truth himself directly appeared with his expansion and expansions of expansion. Their holy name were Ram, Lakshman, Bharat and Shatrughna. These elaborated incarnations thus appeared in four forms as the son of Maharaj Dasharatha. Purport. Lord Ramchandra and his brothers Lakshmana, Bharata and Shatrughna are all Vishnu Tattva, not Jiva Tattva. The Supreme Personality of Godhead expands into many, many forms. Advaitam, Achyutam, Anadi, Anantarupam. Although they are one and the same, Vishnu Tattva has many form and incarnation. I confirm in Brahma Samhita, Ramadi Murutisu Kalani Amenatishtan. The Lord is situated in many forms such as Ram, Lakshman, Bharat and Shatrughna. And these forms may exist in any part of his creation. All these forms exist permanently, eternally, as individual personality of Godhead, and they resemble many candles, all equally powerful. Lord Ramchandra, Lakshmana, Bharat and Shatrughna, who being Vishnu Tattva, are all equally powerful became the son of Maharaj Dasharatha in response to prayer by the demigods. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurjanimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Bhutair Mahadeviyaima Puro Vibho Nirmaya Sete Adamusu Purusam Bukte Gunan Sodasa Sodasatmakam Solam Krishistam Bhagavan Bachansime Gurave Gaurachandraya Radhikaya Itadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhavaradhika Madhuri Aswadai Sukhakaj Jayati Krishna Chaitanya Kali Prakate Brajaraj Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare To aaj ke pravachan mein main mukhyatah Bhagwan Sri Ram ke aavirbhav sambandhi siddhanton ka varnan karunga aur ekad do katha bhi usme ho jayegi in katha sham ko aap log suniyega to yah jo ashlok hai इस श्लोक में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार का कारण बतला रहे हैं कि भगवान कैसे आए कहे प्रार्थितः सुरई देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर साक्षात हरि अपने अंश अंशांश के साथ में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिए भगवान के अवतार के संबंध में शास्त्रों में वर्णन किया गया है जैसा कि श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन किए हैं एते चांसकलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे इंद्रारी व्याकुलम लोकम इंद्र जब अपने अरि के द्वारा शत्रुओं के द्वारा जब व्याकुल किए जाते हैं तो देवताओं के साथ में वे क्षीर सागर पर जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं इससे शिक्षा मिलती है कि देवताओं पर भी परेशानी आ जाती है ऐसा बात नहीं कि जो देवता है तो उनको परेशानी नहीं होगी परेशानी होती है लेकिन जब देवताओं पर परेशानी आती है देवता लोग क्या करते हैं अपने से सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते हैं जरूर शुरू में करते होंगे लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगता है तो भगवान के शरण में आ जाना चाहिए जय श्री गौर निताय राधारस बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय तो इस प्रकार से देवतागण भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान देवताओं को रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं भगवान का भगवत गीता में स्वयं बताते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय तुदिस्तुता साधुओं का रक्षा करने के लिए असुरों का विनाश करने के लिए मैं आता तो भगवान आते हैं भक्तों के लिए मुख करके विष्णु पुराण में अन्यत्र वर्णन किया गया है भगवान के आगमन का कारण। एक दिन भगवान विष्णु ऐसे ही बैठे हुए थे और नारद जी आकर के भगवान विष्णु को बतलाए संसार के जीवों के हालचाल को। नारद जी घूम कर आए थे तो भगवान विष्णु का हालचाल क्या है, उधर सब क्या चल रहा है। तो नारद जी बताए जीवों के हालचाल को। कोई भी बाप हो यदि वह सुनता है कि मेरा पुत्र बड़ा दुखी है तो स्वाभाविक है कि बाप को बड़ा दुख लगता है। तो हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के संतान हैं। जब भगवान सुने तो भगवान को भी दुख लगा और उन जीवों के उद्धार के लिए भगवान सोचे मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो भगवान सोचे कि मैं नर रूप धारण कर करके जाऊंगा, श्री रामचंद्र के रूप में जाऊंगा और नर लीला करूंगा जिससे कि मनुष्य इजली समझ सकते हैं। मनुष्य के क्रिया को, मनुष्य के हाव भाव को हम लोग समझ सकते हैं, भगवान के हाव भाव को समझना मुश्किल है। मर्तली लया, भागवत में वर्णन किया गया मर्तली लया, भगवान आए मर्त लीला करने के लिए। हनुमान जी कहते हैं पांचवें स्कंध में, मर्त्यावतार त्वयः मर्त शिक्षणम, मर्त शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान मर्त्यावतार, मर्त्यावतार मतलब मनुष्य का रूप, मनुष्य के रूप में भगवान आए। रक्षो बधा एव न केवलम विभो कुतो अन्यथा स्याद द्रमतः स आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि स्रस्यस। कहते मर्त्यावतारो, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान आए। न केवलम रक्षो बधाय, केवल राक्षसों का वध करने के लिए ही भगवान यहां पर नहीं आए थे। विभु, राक्षसों के द्वारा अत्याचार हो रहा था उस समय रावण के द्वारा मुख्य करके और उनके चेले चपाटी के द्वारा खूब अत्याचार हो रहा था, तो उस समय भगवान आए थे। तो सुखदेव हनुमान जी कहते हैं रक्षो बधाय एव न केवलम विभु, ऐसी बात नहीं है कि असुरों का केवल विनाश करने के लिए भगवान आए थे। क्यों आए थे? मर्त शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। नहीं तो कुतो अन्यथा स्यात् मतसो आत्मनः, जो भगवान स्याद रमतः स्व आत्मनः, जो अपने आप में रमण करने वाले वे भगवान सीता के लिए वनवन में भटक करके रोते क्यों? जो जगदीश्वर हैं, जगदात्मा हैं, वो सीता के विरह में दुख क्यों भोगते? भगवान श्री राम शिक्षा देने के लिए आए थे, रावण का वध करने के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए सीता के विरह में भगवान रो रहे थे। इसके कारण है कि जब रावण तपस्या किया था और रावण तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि नर और बानरों के अलावा तुम्हें किसी से कोई भय नहीं है, तुमको कोई नहीं मार सकता है नर और बानरों के अलावा। तो रावण समझा कि नर तो दुर्बल हैं, वो क्या करेंगे, और बंदर बंदरगिरी करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो रावण को कोई चिंता नहीं थी कि हमारा मृत्यु इन दोनों से होगा। तो तो मनुष्य मर्ता अवतार, भगवान मनुष्य का रूप धारण किए क्योंकि उसे वरदान था कि मनुष्य के अलावा वो किसी से नहीं मारा जाएगा, मारा जाएगा तो केवल मनुष्य से। तो भगवान आए मनुष्य के रूप में और सीता जी के लिए भगवान व्यथित थे, दुखी थे। जो आत्मरमण करने वाले हैं, यहां पर विभो कहा गया है, जो भगवान एक नहीं अनेकों सीता का निर्माण कर सकते थे केवल दृष्टिपात्र मात्र से, लेकिन भगवान शिक्षा देने के लिए आए। क्या शिक्षा दिए कि बल्कि ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, गृहस्थ बनना बड़ा मुश्किल का काम है। हमारे यहां कहते हैं ब्रह्मचारियों के लिए न आगे नाथ न पाछे पगहा, बिहार में कहते हैं। जो सांड होते हैं ना उनको नाथा नहीं जाता है, कहते आगे नाथ और न पाछे पगहा, पगहा बांधने का, बांधने नहीं जाते हैं। तो ब्रह्मचारी लोग ऐसे ही हैं, कोई बांध नहीं सकता है, और जो गृहस्थ बन गया वो बन गया। तो भगवान शिक्षा देने के लिए आए थे, दो शिक्षा दिए कि गृहस्थी जीवन इतना आसान नहीं है, दुखों का शुरुआत होता है जब कोई गृहस्थ बनता है, तब दुख प्रारंभ होता है उसी दिन से जब गृहस्थ बनता है, उसके पहले नहीं। हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है इसका है? जब गृहस्थ बनते हैं तब। और दूसरा बात शिक्षा देने के लिए आए कि भैया तू गृहस्थ बन गया, चलो कोई बात नहीं, अब पत्नी स्वीकार कर लिया तो सब प्रकार से पत्नी का तुम रक्षा करना, ये भी शिक्षा देने के लिए आए। रावण को मारना पड़ा उस पत्नी की रक्षा के लिए। और तीसरा शिक्षा दिए कि मंदिर का प्रेसिडेंट बनना या राजा बनना भी इतना आसान नहीं है। जिस सीता के रक्षा के लिए भगवान रावण को मार दिए, धोबिया के कहने पर उस सीता को ही भगवान त्याग दिए। मर्त शिक्षण, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवान यहां पर आए थे। तो भगवान सोच रहे थे कि किस प्रकार से मनुष्यों का उद्धार होगा। तो कहा जाता है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लक टुगेदर है, यदि मनुष्य के रूप में जाऊंगा शायद समझेंगे लोग। अब कृष्ण के रूप, इसलिए कहते हैं ना कि राम का करणी और कृष्ण का कथनी, ये पालनीय है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का करणी और कथनी दोनों पालनीय है। ये फायदा है चैतन्य महाप्रभु में, राम का केवल करणी जो किए हैं वो पालन कर सकते हैं, इसका मतलब कथनी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का करनी करने जाओगे तो गया काम से, वो कर नहीं सकते हो। कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर सकते हो, कृष्ण जो कहा है मन मना भव मद भक्तो मध्याय जी माम नमस्कृ, वो कर सकते हो। कृष्ण ने जो किया है तो 16108 गोपियों शादी करो, मर जाओगे, एक पत्नी संभालना मुश्किल है, उतना कहां संभालोगे। कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, जब 6 दिन के थे तो पोटेशियम साइनाइड लगाकर पुतना आई थी, उसका भी बात कर ली, तो टेस्ट कर लो पोटेशियम साइनाइड कैसा लगता है। तो कृष्ण का कथनी और राम का करनी और चैतन्य महाप्रभु का कथनी करनी दोनों पालन कर सकते हैं। तो भगवान माया मोहित सर्वे जना अज्ञान संयुता, जना अज्ञान संयुता, अज्ञान से परिलिप्त हो गए थे सब लोग, माया मोहिता, माया के मुंह में सब लोग। तो भगवान सोचे कथम ईशान भविन मोक्षा, इन लोगों का मुक्ति कैसे होगा, हमारा विष्णु कहां है, उसका कोई मुक्ति करो, कहां है, है? जोग माया में आराम कर रहा है क्या। कथम एषा भवेन मोक्षा, क कैसे इन लोगों का कल्याण हो सकेगा। भगवान राम सोच रहे थे, इति विष्णु चिंतन, इस प्रकार से भगवान विष्णु विचार कर रहे थे कि माया मोहित जीवों का कल्याण कैसे होगा। तब भगवान विष्णु इस कंक्लूजन पर आए, कथाम प्रथयतुम लोके सर्वलोकम अलापहम। उन्होंने कहा कि मैं रामायण लीला करूंगा और इस लीला का विस्तार होगा मानव रूप में। रामायण इधा रामो भूत्वा मानुष चेष्टकम्, मैं राम के रूप में अवतार लूंगा और रामायण मेरी लीला होगी। जब तक से पृथ्वी पर राम का कथा होगा और व्यक्ति सुनता रहेगा तब वह माया में मोहित नहीं हो सकता है। ये भगवान विष्णु का चिंतन है, भगवान विष्णु चिंतन कर रहे थे। तो जो व्यक्ति अज्ञान संयुक्त है, अज्ञान में लिप्त है और उसे ज्ञान नहीं है, माया में दुख भोग रहा है, कथम एशान भवेन मुक्षा। यदि कोई मुक्ति चाहता है, दुख से छुटकारा चाहता है, ये भगवान विष्णु का चिंतन है। और चिंतन करके इस विचार पर आए थे कि राम के रूप में मैं आऊंगा और आकर के लीला करूंगा जिसका प्रतिबद्ध होगा रामायण के रूप में, और रामायण जो है वह सबका कल्याण कर सकता है। वैसे ही यहां पर कहते हैं मानुष चेष्टकम, मनुष्य के रूप में आकर के मैं कार्य करूंगा। भगवान राम यहां पर आए थे, लगता है कि वे यहां पर कहते हैं चेष्टकम, कार्यरत रहूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान काम नहीं करते हैं। भगवान जो करते हैं वो लीला कहलाता है। लीला और क्रिया में अंतर होता है। रामायण भगवान की क्रिया नहीं है, रामायण भगवान की लीला कथा है। भगवान श्री राम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं। क्रिया में सच्चिदानंद स्वरूप तो नहीं होता है, लेकिन लीला में सच्चिदानंद, सत चित और आनंद तीनों। अब यहां पर कोई व्यक्ति खूब काम करता है, आजकल के हीरो कौन है, सचिन तेंदुलकर, यही ना सब लोग उनको हीरो मानते हैं। अब कोई माने कि नहीं तो लीला कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल कर करके, क्या वो सच्चिदानंद है? थोड़ा सोचिए तो। सत मतलब हमेशा रहने वाला, कितना दिनों रहेगा क्रिकेट का। चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद मतलब आनंद देने वाला, सबको आनंद नहीं दे सकता है, सच्चिदानंद नहीं है। ये है क्रिया। और जो लीला होती है वह आनंद देता है सबको। दिखाई पड़ता है भगवान राम भी एक मनुष्य के समान क्रिया किए, सुख दुख से हुए, लेकिन भगवान श्री राम को थोड़ा भी दुख नहीं था। अतः उनके लीलाओं से, उन क्रियाओं को सुनने से मनुष्य को दुख नहीं होगा, बल्कि दुख से उसका निवारण होगा। तो भगवान जो भी करते हैं वो लीला कहलाता है, और मनुष्य जो भी करता है वह क्रिया कहलाता है। इसलिए श्रीपाद जी गोस्वामी कर्म संदर्भ में वर्णन किए हैं, रामः परमात्मा पुरुषः पुराणो नित्यदो नित्यं सुखो निरीह तथापि माया गुणसंगतोऽसौ सुखी व दुखिन विभाव्यते बुधई। भगवान के सुख और दुख का जो दिखावटपना है इसको बुधई बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं वे लीला कर रहे हैं। भगवान जो लीला करते हैं
उसमें क्रिया का ह्रास नहीं होता है, कर्म नष्ट नहीं होता है, जो किए वो रहता है। आत्मनो विक्रियो नास्ति, उदाहरण दिया गया है चंद्रमा का और बादल का। कभी कभी दिखाई पड़ता है कि चंद्रमा बादल से ढक गया है, लेकिन क्या बादल ढकता है चंद्रमा? कभी कभी नहीं ढकता है बादल। उसी प्रकार से दिखाई पड़ता है भगवान राम के लीला में या कृष्ण की लीला, किसी लीला में भी, कि कभी कोई दुख पड़ गया, भगवान राम रो रहे हैं सीता के लिए, लेकिन वो बादल के समान है। भगवान राम में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए यह लीला है। क्रिया में क्या होता है? जहां स्वार्थ होता है उसे क्रिया कहते हैं, कर्तापन का अभिमान होता है। जिस कर्म में कर्तापन का अभिमान हो, जहां स्वार्थ हो, वह क्रिया कहलाता है, और इसके विपरीत जो है वह लीला है। क्रिया करने में, कर्म करने में कर्म बंधन होता है, और जो लीला है वो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। क्रिया में जो कर्ता होता है वो परवश होकर कर्म करता है, स्वेच्छा से कर्म नहीं करता है, परवश होकर। पहले कर्म किए थे, कर्म का फल है, उसके अनुसार हमें कर्म करना पड़ता है, परवश होकर। जबकि लीला जो होती है स्वेच्छा से होती है, उसमें परवश होकर के मनुष्य कर्म नहीं करता है। जैसे जो क्रिया होती है उसका फल भोगना पड़ता है, जो कि लीला होता है वह कर्म फल से मुक्ति दिलाता है। उदाहरण के लिए माखन चोरी, माखन चोरी का कृष्ण लीला किए, माखन चोरी का लीला कितना सुंदर है। बड़े बड़े कवि लोग माखन चोरी के संबंध में कितना सुंदर सुंदर पद बनाए हैं, कितने भक्त लोग इसका गुणगान करते रहते हैं, और ऐसे लीला कथाओं से लोगों की मुक्ति होती है। आज भी कोई जगह किसी घर में चोरी करना शुरू करे तब क्या होगा? दिखाई पड़ेगा वो भी कर्म है, लेकिन जेल में जाना पड़ेगा। वो लीला नहीं कर सकता, मैं लीला किया हूं, वो कर्म है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, संसार सिंधु मति दुस्तरणम उत्तितापो न अन्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथारस निसेवणम अनस्ते पुंसा भवेद विविध दुखवार्तितस्य। पुंसा भवेद, व्यक्ति हो जाएगा क्या? विविध दुख आर्तितस्य, विभिन्न प्रकार के दुखों से कोई परे हो सकता है। और संसार सिंधु, संसार सागर के त्रितापों से कोई दुख परे हो सकता है, तो लीला कथारस निसेवणत्य, भगवान के लीला कथाओं में मग्न रहना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए, भगवान के कथाओं का गुणगान करना चाहिए। ये भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो सेवा है, ये श्रवण करना भी एक सेवा है, श्रवण भी एक सेवा है। तो भगवान की सेवा से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जय श्री गौनिताय की जय, राधारास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है भगवान का सेवा, और विभिन्न प्रकार का सेवा है, उसमें से एक सेवा है भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे, एक कथा सुनना, ये दूसरा सेवा है। भगवान हम लोगों के लिए लीला किए हैं, हम लोगों को आनंद देने के लिए भगवान ने लीला किए हैं। संसार की कोई वस्तु भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती है। जो भगवान का गुणगान करता है, भगवान का सेवा करता है, भगवान का लीला श्रवण करता है, वो भगवान का प्रिय हो जाता है। जीवित रहता है तो भी प्रिय है, और प्रिय हो गया मतलब चला गया तो भी प्रिय है, तो सब प्रकार से वह प्रिय रहता है। पांचवें स्कंध में हनुमान जी पुनः कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि हम जैसे जंगली को भी अपना दोस्त बना लिए। कोई जंगली से दोस्ती चाहता है नहीं, कोई गलती करता है अरे तुम कैसा भक्त है, तू जंगली जैसा है, यही कहते हैं ना, तू जंगली आदमी है, अनसिविलाइज व्यक्ति है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं न जन्म नूनम महतो न सौहगम न वाक न बुद्धि आकृतिम तो सहेतु तैर्याद विशिष्टा न पिनो बनौ कसह चकार सखे बत लक्ष्मणाग्रज। कितना सुंदर चीज हनुमान जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर कहते हैं। कहते महत तोष हेतु, भगवान श्री राम को प्रसन्न यदि करना है, तोष मतलब प्रसन्न, हेतु यदि भगवान श्री राम को प्रसन्न करना है तो कहते हैं न जन्म, ऊंच कोटि में जन्म लेकर कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऊंच कोटि वाले भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई सोचे कि नहीं मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया हूं, मेरा बपौती है, भगवान हमारे सेवक हैं, भगवान को मैं खुश कर सकता हूं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से या क्षत्रिय परिवार या वैश्य परिवार में, तो हनुमान जी कहते हैं ना ना, ये ऊंच कुल में जन्म बल्कि भक्ति में बाधक हो सकता है, प्राय बाधक ही होता है, साधक बड़ा कम होता है। न सौभगम, और न तो बड़ा सौभाग्य। सौभाग्य मतलब साधुओं का संगति, भगवान का दर्शन, मंदिर में रहना, ये सौभाग्य है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग हरे कृष्ण मंदिर में हैं। हनुमान जी कहते हैं मंदिर में रहने से ही भगवान को खुश नहीं कर सकते हो। न सौभगम, न तो ऊंच कोटि में जन्म लेना, न सौभगम न वांकम, और न तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रवचन करके ही, चतुराई से अलंकारिक भाषा में बात कह कर करके, न बुद्धि और न तो पीएच डिग्री पास कर करके, भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि के द्वारा, न आकृति और न तो अपने सौंदर्य के द्वारा, तो सहेतु ये सब भगवान को प्रसन्न करने के चीज नहीं है। नहीं तो तय यदि यह सब प्रसन्न करने का चीज होता तो हम तो न बनौ कसम, हम तो वनवासी हैं, हम तो वन में रहने वाले हैं, हम में से इसमें से कोई भी गुण नहीं है, न तो हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, न तो किसी मठ मंदिर में ज्वाइन किए, न तो हम प्रवचन करने वाले हैं, न तो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने चकार सखे बतलक्ष्मणाग्रज, चकार स्वीकार किया प्रभु ने, सखे सखा के रूप में, बतो लक्ष्मण अग्रज, हाय हाय उन प्रभु लक्ष्मण के अग्रज को कहना ही क्या है। इस पूरा जो श्लोक है इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण के अग्रज। राम नहीं कहा गया, कौशल्या नंदन नहीं कहा गया, दशरथ नंदन नहीं कहा गया, यहां पर लक्ष्मणाग्रज हनुमान जी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कैसे भगवान को प्रसन्न किए, सेवा के द्वारा, इसीलिए यहां पर लक्ष्मण जी को, राम जी को लक्ष्मणाग्रज कहा गया है। लक्ष्मण जी सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किए। सेवक होना इतना आसान नहीं है, इसलिए संसार में सब लोग मालिक बनना चाहते हैं, सेवक कोई नहीं बनना चाहता है। लेकिन जो सेवक बन जाता है भगवान उसके सेवक बन जाते हैं, जो सेवक बन जाता है। सेवक कौन बन सकता है? जो सब कुछ त्याग करके एक ही उसका ध्येय होता है कि हमारे मालिक कैसे खुश रहे, एक ही ध्येय रहता है। जो अपने मन को मार लेता है, मन में कोई इच्छा नहीं रखता है, मालिक के इच्छा को ही अपना इच्छा जो समझता है, अपजस अपमान दुख इत्यादि जो भी सहन कर लेता है, निंदा अपमान जो भी सहन कर लेता है, वही सेवक हो सकता है। और जो यह करता है, यह सह सकता है, वो बड़ा व्यक्ति है, इतना छोटा नहीं है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को त्याग दिए थे, फिर भी लक्ष्मण जी सेवा नहीं छोड़े। भगवान श्री राम सीता को ही नहीं त्यागे, लक्ष्मण को भी त्यागे थे। एक समय भगवान श्री राम जब राजा थे, उस समय एक देवदास आया था। अब भगवान के आगे के प्लान के विषय में कि अब क्या करना है, तो देवदास से भगवान मीटिंग कर रहे थे और लक्ष्मण जी से कह दिए थे कि देखो कोई व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए, मेरा एक स्पेशल कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, एक गुह्य मीटिंग है, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, यदि कोई अंदर आ जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। तो लक्ष्मण जी तो अपना कोई इच्छा था नहीं। अब आजकल के हमारे भक्त लोग होते तो कहते कि यदि आपके सीनियर आ जाए तब क्या कहूंगा, वो हजार प्रश्न करते ना, यदि आपको प्यास लगे तो पानी लेकर आऊंगा कि नहीं, कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, हजार बार पूछेंगे, इन करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ नहीं पूछे, जैसा भगवान राम कहे वैसा ही लक्ष्मण जी किए। बाहर खड़े थे, पहरा दे रहे थे, भगवान श्री राम की मीटिंग चल रही थी। उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। अब तो आप लोग जानते हैं दुर्वासा मुनि का हालचाल कैसा है, क्षणापि तुष्टम क्षणापि रुष्टम इति दुर्वासा, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत गुस्सा करते हैं, ये है दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा जी आए और कहे कि मुझे राजा राम से मिलना है, बड़े गंभीर स्वर से बोले। तो लक्ष्मण जी समझे कुछ बड़ा सीरियस बात है, तो अंदर भी सीरियस चल रहा है, बाहर भी सीरियस है, बीच में मैं पढ़ाऊं क्या करूं। अब लक्ष्मण जी सोचे कि भाई दुर्वासा का बात नहीं मानूंगा तो गड़बड़ होगा, और उनका बात तोड़ता हूं तभी गड़बड़ होगा, कि कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास गए और कहे दुर्वासा जी आए हुए हैं, अब मैं क्या करूं। लक्ष्मण जी बड़े धर्म संकट से गुजरे हैं, उधर भगवान राम ने कह दिया सीता जी का रक्षा करना है? लेकिन उस समय रक्षा का भार दिए थे, ये नहीं कहे थे कि रक्षा नहीं करो तो मैं मृत्यु दंड दूंगा, उस समय नहीं कहे थे या कुछ करूंगा, इस बार कह दिए थे कि देखो कोई अंदर आ जाएगा तो उसमें मृत्यु दंड दूंगा। अब लक्ष्मण जी अंदर चले गए, अब तो भगवान राम बड़े परेशानी में पड़ गए, अब क्या करूं मैं, अब इसे मृत्युदंड कह दिया जाए, इतना बेचारा सेवा किया वनवास काल में, कहां कहां क्या क्या किया, अब मैं इसे मृत्युदंड कैसे दूं। भगवान राम बड़े परेशानी में पड़ गए। तब कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाए कि अब क्या करना चाहिए, अब तो बड़ी परेशानी में फंस गया हूं, मुझे अपना वचन भी रखना है और लक्ष्मण का हत्या भी नहीं कर सकता। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मृत्यु का अल्टरनेटिव एक ही है और वह है त्याग। त्याग आप त्याग दीजिए लक्ष्मण को, तो मारेंगे भी नहीं लेकिन मृत्यु के समान है। त्याग जो होता है वो मृत्यु के समान होता है। पति पत्नी को त्याग दे, आजकल तो पत्नी पति को त्याग देती है, पहले उल्टा था, पति पत्नी को त्याग दे तो पति पत्नी के लिए मृत्यु के समान था। ये सीता जी सती मृत्यु के समान था त्याग। सेवक के लिए स्वामी का त्याग मृत्यु के समान होता है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को त्याग, अब तैयारी कर रहे थे, वो देवदास से बात कर रहे, तैयारी कर रहे थे कैसे अब जाना है। तो भगवान लक्ष्मण जी को भी त्याग दिए थे, फिर भी लक्ष्मण जी अपना सेवा नहीं छोड़े थे। तो सेवक बनना है, भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो लक्ष्मण के समान रहो। इसीलिए यहां पर और कहते हैं लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण के अग्रज भगवान श्री राम कितने दयालु हैं। बनौ कस, हम वनवासियों को, वनचारियों को, हम जंगलियों को भी चकार सखे अपना सखा बना लिए। तो भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है और वह है भगवान का सेवा। भगवान सेवा से जितना प्रसन्न होते हैं और किसी कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इस श्लोक में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी शुरू तो किए कि साक्षात हरि आए यहां पर देवताओं का प्रार्थना सुन करके, लेकिन भगवान श्री हरि आए थे सेवा का अवसर देने के लिए। दशरथ जी को सेवा का अवसर दिए, माता कौशल्या को सेवा का अवसर दिए, चारों भाई तीनों भाइयों को सेवा का अवसर दिए, सेवा का अवसर देने के लिए भगवान आए थे। रावण पूर्व जन्म में एक बड़ा प्रतापी राजा था, नाम क्या था? प्रताप भानु, भानु प्रताप, भानु प्रताप राजा था। बहुत मैं संक्षिप्त में कहूंगा तो भानु प्रताप राजा इतना बलशाली था कि अन्य समस्त राजाओं को परास्त कर दिया था। उतना ही नहीं, ऋषियों का वे भली भांति रक्षा करते थे, ब्राह्मण वैष्णवों का रक्षा करते थे। तो रक्षा के दौरान ही एक असुर रहा करता था, वह प्रायः ऋषियों को परेशान करता था। और वह अकेला नहीं था, उसके पांचे भाई लोग भी थे। तो भानु प्रताप राजा उसके समस्त बंधुओं को मार डाले, लेकिन वह एस्केप हो गया, वो भाग गया जंगल में। जब वो जंगल में गया तो उसे एक तपस्वी मिला, लेकिन वो तपस्वी कोई तपस्वी नहीं था, वो अभी एक राजा था जिसको भानु प्रताप परास्त किए थे। तो उसको बहुत इंसल्ट कर दिए थे, तो वह शोध अपना बदला लेने के लिए सोचा मैं घर नहीं जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊंगा, और आज के दिन भानु प्रताप इतना बलवान है कि इसे मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसे लड़ाई भी नहीं करूंगा, घर भी नहीं जाऊंगा, और मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या के बल से वह वर प्राप्त करूंगा कि इसको मैं प्राप्त करूंगा। तो यह भी खुनस लेकर के बैठा था, और जो राक्षस था वो मायावी था, वो भी खुनस पाल करके बैठा था। वो आया, वो मायावी था, वो समझ गया कि राजा को क्या परेशानी हुई है, किस प्रकार से भानु प्रताप ने इन्हें परास्त किया है और इंसल्टेड फील कर रहे हैं। तो आ करके अब दोनों आपस में बात किए, तो चोर चोर मौसेरे भाई है, जब दोनों हारे हुए थे, दोनों को खुनस था, दोनों को द्वेष था भानु प्रताप से, तो दोनों ने दोस्ती कर लिया। एक समय राजा भानु प्रताप शिकार के लिए निकले तो एक घने जंगल में चले गए, उसी जंगल में वो राक्षस रहता था। तो वह राक्षस एक जंगली सुअर का रूप धारण कर करके और भानु प्रताप के सामने आया। भानु प्रताप को जब जंगली सुअर देखा और ये देखे तो ऐसा लग रहा था कि वो इन पर अटैक करेगा, तो अपना रक्षा करने के लिए अपने धनुष पर तीर चढ़ाए, तो अपना प्राण बचाने के लिए वह असुर जो सुअर के रूप में था चला भाग, भागते गया भागते गया भागते गया, कई एक योजन तक वह भागा, कई एक योजन तक भागा, 22 या कई एक योजन तक उसका वर्णन किया गया है, और जाकर के वह गुफा में छिप गया। अब यह उसी गुफा के पास जाकर छिपा जहां पर वह राजा पाखंडी साधु बनकर के तपस्या कर रहा था। बेचारे थके थे, प्यासे थे, भूखे थे, इनका घोड़ा भी थक गया था, प्यासा था, तो ऋषि का आश्रम देख करके ऋषि के आश्रम में गए, ऋषि को प्रणाम किए। वह जो ढोंगी साधु था, जो राजा, वो पहचान गया कि भानु प्रताप ही है, लेकिन ये नहीं पहचान पाए, तो कहे कि मैं शिकार के लिए आया था, रास्ता भूल गया हूं, मुझे बहुत भूख प्यास लगी है, घोड़े को भी प्यास है। तो उस पाखंडी ऋषि ने कहा कि यहां पर जल है, आप जाकर के वहां पर जल ग्रहण कर लो। तो जल वल पी करके आए तो ऋषि, बल्कि वह कहा कि मैं देख सकता हूं कि आप तो एक तपस्वी, एक राजा लगते हैं, परिचय पूछने लगे आप कौन हैं। तो भानु प्रताप भी राजा थे, तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज भानु प्रताप का मंत्री हूं, और हम लोग शिकार के लिए निकले थे, मैं अकेला पड़ गया, एक सुअर को मारने के पीछे दौड़ा और यहां तक आ गया, पता नहीं सुअर कहां छिप गया और मैं अकेला पड़ गया हूं। तो ऋषि ने कहा देखिए अब शाम का समय हो गया है, अब रात्रि विश्राम आप यहीं कर लीजिए और कल आप अपने यहां चले जाइए। तो इस प्रकार से दोनों में खूब वार्ता हुई। तब भानु प्रताप ने भी उस ऋषि से पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आपके माता पिता कौन थे। तो कहा कि मेरा नाम है एक शरीरा, ऐसे ही नाम है ना तमाल जी, एक तनु, एक तनु। कहा एक तनु, अभी तक ऐसा नाम नहीं सुना था, एक तनु नाम कहां से आ गया। कहा नहीं ब्रह्मा जी मेरा सृष्टि के तब से मैं अपना शरीर बदला ही नहीं, उसी शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम है एक तनु। तो वहां पर खूब लुभावना दे दे करके खूब राजा को अपने बस में कर लिया। जब अपने बस में कर लिया तब राजा भी बेचारे सोचे कि इतना पहुंचा हुआ है, फकीर है, अब इसे छिपाना उचित नहीं है। तो राजा कहे कि महर्षि मैं आपसे एक कन्फेशन करना चाहता हूं, मैं कुछ छिपाया हूं आपसे। तो वह राजा जो पाखंडी ऋषि बना था हंसने लगा, कहा कि हे महाराज मैं सब जानता हूं, आप क्या छिपाए हैं, कोई बात नहीं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, राजा को ऐसे ही होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप भानु प्रताप राजा हैं, आप राजा के मंत्री नहीं हैं, आप भानु प्रताप राजा हैं, आपने छिपाया, कोई गलती काम नहीं किया, ये राजा का धर्म है, कोई बात नहीं, आप आज रात्रि यहीं विश्राम करें और कल सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो अपने को आप अपने महल में पाएंगे। आप रास्ता भूल गए हैं, थक गए हैं, चिंता मत कीजिए, वो अपने जोग बल से मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। अब राजा का विश्वास और बढ़ते जा रहा था, और बढ़ते जा रहा था, और बढ़ते जा रहा था। तो राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दे कि मैं संसार में सबसे बलशाली हो जाऊं और संसार में कोई मेरा शत्रु न रहे और मैं बहुत दिन तक सुखोपभोग करूं, जीवन यापन करूं। तो ऋषि ने कहा कि देखिए ये कार्य तो बड़ा कठिन लगता है लेकिन असंभव नहीं है। तो कहा बताइए क्या, बताइए। कहा देखो संसार में जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद कोई काट नहीं सकता है,
मैं देख सकता हूं कि ब्राह्मण लोग आपसे इतने प्रसन्न होंगे, इतने प्रसन्न होंगे कि आपको ऐसा वरदान देंगे, ऐसा वरदान देंगे कि आपको कोई नहीं मार सकता है, आप किसी के द्वारा नहीं मारे जा सकते हैं, प्राय अमर हो जाएंगे। तो कहा तब क्या करना चाहिए ब्राह्मणों को खुश करने के लिए? आजकल के हरे कृष्ण डिवोटियों खुश करना होगा तो क्या करना चाहिए गोपेश्वर प्रभु? आईपॉड देना चाहिए और क्या गोपेश्वर प्रभु? और बताइए, प्रसाद यहां इतना मिलता कोई खाता नहीं है, पनीर सब्जी है, समय चेंज हो गया। हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, वीसा दिला दो मेरे क्या कहा तो अच्छा होगा। एनीवे, तो उसने कहा कि देखिए ब्राह्मणों को खुश करना है तो उनको भर पेट खिलाइए, फर्स्ट क्लास फिस्ट। लेकिन आप तो जानते हैं कि आपके रसोईया के द्वारा कोई महाराज आएगा तो उनके द्वारा नहीं, ब्राह्मणों को खिलाने के लिए ब्राह्मण ही, और एक दिन में एक एक लाख ब्राह्मण आपको खिलाना पड़ेगा। तो राजा थोड़ा चिंतित हो गए। तो यह पाखंडी जो साधु था कहा उसका चिंता मत कीजिए महाराज, प्रायः मैं किसी गांव नगर में नहीं जाता हूं, लेकिन आप अपने भक्ति से आप मुझे इतना खुश कर दिए, इतना खुश कर दिए हैं कि मैं आपके लिए इतना सेवा जरूर कर सकता हूं। क्या करूंगा कि मैं आऊंगा और आपके यहां आकर के और आपके यहां कुछ दिन पुरोहित का काम करूंगा और बाद में ब्राह्मणों के लिए मैं भोजन बनाऊंगा। मैं, मेरे पास शक्ति है कि एक साथ में लाखों लोगों को लाखों प्रकार का व्यंजन मैं खिला सकता हूं। अब तो राजा का सब भेड़क दूर हो गया, राजा बड़े खुश हो गए। तो कहा कि महाराज लेकिन हमारा तो पुरोहित वहां पर है। कहा उसका चिंता मत कीजिए, हम अपने जोग बल से आपको वहां कर देंगे, आपके पुरोहित को लाकर यहां रख देंगे, कुछ दिन रखेंगे और बाद में मैं आपके राज में आपके पुरोहित के रूप में आऊंगा और बाद में मुझे किचन का भार संभाल देना। राजा खुश हो गए, रात को सो गए। जब सुबह में राजा उठे, राजा सो गए तो वह ऋषि उस दानों को बुलाया और सब बात कह दिया क्या क्या हुआ है। तो दानों ने कहा कोई बात नहीं, वो दानों राजा को उठाया घोड़ा के साथ में लेकर चला गया राजा के राज में, घोड़े को बांध दिया घुड़सवार में, राजा को रानी के बिछौने पर रख दिया और पुरोहित जी को उठा करके लेकर के आया और एक कंदरा में बंद कर दिया, एक गुफा में बंद कर दिया। कहा कुछ दिन आप आराम कीजिए, बहुत थक गए हैं। जब सुबह सुबह बिल्कुल हुआ ढाई तीन बज रहा होगा, राजा उठे तो देखे अरे एक मैं कहां हूं, राजमहल में हूं, रानी सोई है। तो राजा तुरंत उठे, घुड़सवार में गए और देखो तो वो घोड़ा भी वहीं पर है। घोड़ा को उठाए और घोड़ा को लेकर के चले गए जंगल में। जब दोपहर हुआ तब आए, क्योंकि राजा आ रहे हैं किसी को मालूम नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, तब राजा ने कुछ मालूम ना चाहिए ना। अब राजा आए में खूब स्वागत हुआ, क्या क्या हुआ। इधर वो दानव जो था वो पुरोहित के रूप में दो दिन के बाद में पुरोहित का भेष कपड़ा वड़ा पहन करके आ गया और निहित समय के अनुसार एक लाख ब्राह्मणों को बुलाया गया भोजन के लिए। तो हजारों लाखों प्रकार का व्यंजन बनाया, लेकिन उसमें ब्राह्मणों का मांस का व्यंजन बनाया, ब्राह्मणों के मांस से व्यंजन बनाया। अब परोसा गया खाने के लिए, जो ही ब्राह्मण खाने जा रहे थे उसी समय यह जो राक्षस था अपना अंतर ध्यान होकर के और गंभीर वाणी से आकाशवाणी किया कि हे ब्राह्मणों सावधान, जो तुम खाने जा रहे हो इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस है, ब्राह्मणों का मांस है और एक राक्षस के द्वारा बनाया गया भोजन है। अब इतना सुनकर के सब ब्राह्मण लोग गुस्सा हो गए, लेकिन राजा तो हक्का बक्का हो गए, राजा कुछ बोल ही नहीं रहे थे अपने डिफेंस में। तब क्या हो गया, मौनम सकृति लक्षणम। अब सब ब्राह्मण लोग को गुस्सा हो गया कि राजा ने ऐसे किया तो इन लोगों ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ कलांतर में तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा परिवार सब भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और तुम असुर बनोगे और मनुष्य के हाथों मारे जाओगे। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। जब श्राप खत्म हुआ तब पुनः आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि लोग, हे ब्राह्मण गण, आप लोग व्यर्थ में राजा को श्राप दे दिए। बेचारा राजा का कुछ भी गलती नहीं था, इसने क्या गलती किया? अरे पकाने वाला कुछ था, गड़बड़ कर दिया, वही था। और सब लोग गए किचन में, किचन में रसोईया है और न कोई वस्तु है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से कालांतर में जब राजा को श्राप हुआ और ये असुर जाकर के उस ढोंगी राजा को बता दिया, तो वह समस्त राजाओं को बुलाया जो प्राप्त हुए थे और सब लोग अटैक किए और भानु प्रताप को प्राप्त कर दिए और उनके परिवार वालों को मार डाले। कालांतर में यही भानु प्रताप रावण हुए। उनको वरदान था, आशीर्वाद था या श्राप था कि मनुष्यों के हाथ से वे मारे जाएंगे। ऋषियों के द्वारा कहे गए बात को ब्रह्मा जी भी टाल नहीं सके। सत्यम विधातु निवृत्त भाषितम। भगवान भी अपने भक्तों की बात करते हैं। ब्रह्मा जी को ब्रह्म कोप नहीं लेना था, ब्राह्मणों का कोप भाजन नहीं बनना था, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद देते समय कहा कि भैया देखो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, यदि कोई मारेगा तो तुम्हें भय है तो केवल मनुष्य और बंदरों से। जब रावण अत्याचार कर रहा था चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब देवतागण क्षीर सागर पर गए और भगवान से प्रार्थना किए, तो भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु जब आए तो वहां पर ब्रह्मा जी थे, समस्त देवतागण थे, ऋषि लोग थे। भगवान श्री राम ने पूछा कि रावण इतना शक्तिशाली हो गया है ब्रह्मा जी की कृपा से, कब इस पर इसे वध करना बड़ा मुश्किल है, आप लोग बताइए। भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी सबसे पूछे, सब ऋषियों से ब्रह्मा जी सबसे पूछे कि आप लोग बताइए कारण क्या, कैसे इसको हम मार सकते हैं, कैसे वध हो सकता है रावण का। तब ये ऋषि लोग ये वृतांत सुनाए रावण के पूर्व जन्म का, और ब्रह्मा जी कहे कि हाँ मैं भी जब उसे वरदान दे रहा था तो यही कहा था कि मनुष्यों के अलावा और तुम किसी के द्वारा, मनुष्य और बंदरों के अलावा और तुम किसी के द्वारा नहीं मारे जाओगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब काम खत्म होगा, आप लोग जाइए आराम कीजिए और अब मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा। कहीं कहीं वर्णन किया गया है कि भगवान राम जब आते हैं तो कभी कभी आते हैं वे शंख चक्र गदा और पद्म, भगवान के ये चारों आयुध हैं, वे आते हैं। और कभी कभी भगवान चतुर्भुज के रूप में, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में आते थे। तो इस चतुर्युग में भगवान आए थे वे भगवान थे वासुदेव, शंकरसन, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न। जो लक्ष्मण जी थे वे शंकरसन के अंश यानी शेष नाग थे, और वासुदेव साक्षात भगवान हैं। पांचवें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है कि वहां पर राम के लिए वासुदेव शब्द आया हुआ है, और उसी के कमेंट्री में गोस्वामीगण बतलाए हैं कि इस चतुर्युगी में भगवान वासुदेव, शंकरसन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न आए थे, नहीं तो अन्य चतुर्युगियों में प्रायः शंख, चक्र, गदा और पद्म यही आते हैं, केवल इस चतुर्युग में ये आए थे। एनीवे तो कहते हैं तस्यापि भगवान एष साक्षात ब्रह्ममयो हरि। साक्षात भगवान जो सुप्रीम ब्रह्मन है, ब्रह्ममयो परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम धाम हरि, वे आए, कैसे आए? अंश अंशेन चतुर्धा, अपने अंश और अंशेन, अंश और अंशों के अंश के रूप में भगवान आए, पुत्रत्वम पुत्रत्व को प्राप्त किए। भगवान मनुष्य के रूप में आए थे इसलिए पुत्र हुए। भगवान नरसिंह मनुष्य के रूप में नहीं आए थे इसलिए बाप नहीं बनाए, बिना बाप के ही भगवान नरसिंह देव आ गए। वैसे ही भगवान कृष्ण आए तो कैसे भी आ सकते थे, कृष्ण कहीं से आ सकते, जेल से ही आए कोई बात नहीं, वो लीला पुरुषोत्तम है, वो कहीं से आता, उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि बेटा के रूप में आए, कहां रूप में आए, किसी रूप से आ सकते हैं, उल्ला पुरुषोत्तम है। और जितने भी भगवान पृथ्वी के रूप में आए तो बेन के शरीर को ये करना पड़ा, लेकिन भगवान राम परफेक्ट मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य जो कि मां और पिता के से उत्पन्न होता है, तो कहते हैं पुत्रत्वम, पुत्रत्व को प्राप्त किया, पुत्र मतलब मां बाप के संसर्ग से, प्रार्थित ईश्वरी, देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर। और यह दशरथ जी को भी कोई संतान नहीं था, तो एक दिन दशरथ जी वशिष्ठ जी को सुमंत जी को सबको बुला करके और सलाह लिए और कहे कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, इसका वर्णन अच्छी तरह से किया गया है। और अश्वमेध यज्ञ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप अग्निदेव आए, उन्होंने खीर दिया और उस खीर को लेकर के महाराज दशरथ सर्वप्रथम जो खीर था उसका आधा भाग कौशल्या जी को दिए और जो आधा बचा उसका आधा सुमित्रा जी को दिए और जो बचा था उसका आधा कैकेयी को दिए और जो थोड़ा अवशेष मच गया था, सुमित्रा छोटी रानी थी इसलिए छोटे को ज्यादा देना चाहिए और थोड़ा दे दिए। तो इस प्रकार से कौशल्या जी से भगवान श्री राम, कैकेयी से भरत लाल और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण आए। त्रिपाठी गोस्वामी बताए हैं कि भगवान राम जो थे वे वासुदेव, संकर्षण जो थे लक्ष्मण जी, प्रद्युम्न जो थे वो भरत जी, अनिरुद्ध जो थे वो शत्रुघ्न थे। इस प्रकार से भगवान आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, देखो देखिए क्रम देखिए, राम लक्ष्मण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इस रूप से सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल की रखिए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा, इस प्रकार से इन लोगों का नामकरण हुआ इस रूप से। खैर नवम स्कंद में संक्षिप्त में है, लेकिन सब पूरा रामायण नवम स्कंद में है, संक्षिप्त में है, उसको नवम स्कंद समझने के लिए पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा तब समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस धराधाम पर आए थे दशरथ जी के पुत्र के रूप में, अपने भाइयों के साथ में, देवताओं के प्रार्थना पर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ओके ओके राम रूप पहले आई गो इन क्रम।
बोथ इन श्रीमद भागवतम एंड चैतन्य चरितमृत
इट्स वर्किंग,
इट इज मेंशन दैट हिरण्यकशिपु बिकेम रावणासुर, सो यू आर नरेटिंग सम स्टोरी, वेयर इज व्हाट इज द हाउ डू वी अंडरस्टैंड
हिरण्यकशिपु? यस, ही बिकेम रावण, देयर नो डाउट इन दैट, but this pastime of this Bhanu Pratap, you know, he was cursed to become demon, so maybe both combined together, I don't know, I have to find out. ये बोलते हैं कि एक चतुर्युग में भानु प्रताप रावण थे, हो सकता है इस चतुर्युग में ये आए हुए हैं।
Which scripture, which Quran? This story is from which Quran?
It is in Tulsi Ramayan and also it is mentioned in Padma Puran.
Padma Puran. गोपेश्वर प्रभु
एंड आई रेड लॉन्ग अगो दिस
लास्ट ईयर कहा लुक एट माय नोट
हरे कृष्णा कौन सा कहना विष्णुपुराण विष्णुपुराण आई टुक नोट फ्रॉम लास्ट ईयर
हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद बढ़िया क्लास रहा दो प्रश्न एक है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान का पूजा क्यों नहीं होता है जैसे हम लोग सीताराम लक्ष्मण हनुमान रखे सभी जगह तो भरत शत्रुघ्न का भी विग्रह होना चाहिए
कहीं कहीं है राम दरबार में कहीं पर पूरा सपरिवार है ऐसा बात नहीं है लेकिन मोस्टली राम लक्ष्मण सीता हनुमान जब रावण का वध हो गया जब सब तीनों मिल गए तो हनुमान जी आ गए स्वर्ण में बस बस आपको मुझे मत बिसारना प्रभु
दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी का आविर्भाव क्यों नहीं मनाते
हनुमान जयंती तो मनाते हैं लोग
बाहर मनाते इस्कॉन में तो हनुमान जी उतना मनाते
आप मना सकते हो कोई नाम नहीं बोला है हनुमान जी का ड्यूटी है यहां पर लेकिन
अपीयरेंस है हनुमान लक्ष्मण
लेकिन लक्ष्मण जी राम जी एक ही दिन आए थे तो रावण में दिन सबका हो जाता साथ में हाँ सबका होता है अब नहीं किया इस साल कर लेना कल कर लेना आप
तो राम नवमी के साथ लक्ष्मण नवमी भी कहा जा सकता है
राम लक्ष्मण भरत तो सब चारों साथ में ही आए थे नवमी तिथि थी नवमी तिथि बड़ा शुभ लक्षण है मैं प्राय कहता हूं कि नौ का नौ से गुणा कितना से भी गुणा करो नौ नौ ही रहेगा है ना और नौ में कितना भी जोड़ोगे उतना ही मिलेगा नौ में एक जोड़ो दस हुआ जीरो और एक एक हुआ नौ में दो जोड़ो ग्यारह हुआ एक एक दो हुआ जितना जोड़ोगे तीन जोड़ोगे बारह होगा दो और एक तीन हुआ चार जोड़ोगे तेरह होगा चार और एक तीन और एक चार होगा पांच जोड़ोगे चौदह होगा है तो चार और एक पांच हुआ छह जोड़ोगे पंद्रह होगा पांच और एक छह हुआ सात जोड़ोगे अठारह हुआ है हाँ छह और एक सात हुआ फिर और आठ जोड़ोगे कितना हुआ सत्रह हुआ सात और एक आठ हुआ नौ जोड़ोगे कितना हुआ अठारह हुआ और आठ और एक नौ तो नौ में जितना भी जोड़ोगे उतना आपको भगवान उतना ही देंगे ठीक है ये यथा माम प्रबदंते तथा सजीव हो जाएंगे लेकिन उनका गुण खत्म नहीं होता है नौ में कितना मल्टीप्लाई करो सोचो कि मेरे देने से भगवान धनी हो जाएंगे नहीं नहीं भगवान वहीं रहते हैं नौ में दो से गुणा करो अठारह हुआ आठ और एक कितना हुआ नौ हुआ तीन से गुणा करो वो छत्तीस होगा तीन और छह कितना हुआ नहीं सत्ताईस होगा ना भूल गया बहुत पहले पढ़ा था तो दो और सात कितना हो गया नौ हो गया चार से गुणा करो छत्तीस होगा तीन और छह कितना हो गया नौ पांच से करो पैंतालीस होगा चार और पांच कितना हुआ नौ हुआ तो कितना भी डालो भगवान हमें नहीं चाहिए तुम्हारा तो अपने पास रखो जितना दिया उतना ही दे दो चलो भगवान पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णयात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओके सेकंड क्वेश्चन
धन्यवाद हो गया दो प्रश्न हो गए
ओके तमाल जी अब कमाल करेंगे
हरे हरे बोल
तमाल जी कुछ गाएंगे क्या
नहीं नहीं, नहीं।
मूड में आ गए हैं
आपने ब्रह्मचारी की तुलना सांड से किया सांड को
मैं तुलना नहीं किया
सुनिए पहले सुन लीजिए आपने जो व्याख्यान दिया उसी को मैं बता रहा हूं सांड को गोपति कहा जाता है तो गाय का पति होता है तो ब्रह्मचारी किसका पति होता है दूसरी बात सांड स्वच्छंद होते हैं तो स्वच्छंद रहकर वो तो भोग करता है गायों के साथ लेकिन जो ब्रह्मचारी भी स्वच्छंद होते हैं तो किसी का उपभोग नहीं करते हैं
तमाल जी
नहीं प्रश्न जो है उसको बताइए सांड से क्यों तुलना किए सांड तो भोगी है ब्रह्मचारी तो त्यागी है तो त्यागी के भोगी के साथ क्यों तुलना किए
लेकिन आप सब नहीं आप पूरा मत जाइए ना मैं जितना कहता हूं उतना ही समझिए ना आप ज्यादा ही समझ रहे हैं जो कि आपके लिए हानिकारक है आप एक्सक्यूज मत लीजिए मैं ये कह रहा था कि सांड जो होते हैं वो बंधन में नहीं होते हैं बस इतना ही कर रहा हूं ज्यादा नहीं तो ब्रह्मचारियों को बंधन में नहीं रह जाए घर गृहस्थी बंधन है मैं ये बात वो नहीं कह रहे हैं घर गृहस्थी वाला बात गोपति बनना चाहते हैं क्या आप भी बुढ़ापे में
आप जो बोलते हैं सांड की वो मैं बोल रहा हूं.
नहीं नहीं, मैं वो एक थोड़ा सा तुलना किया, पूरा मत लीजिए. जितना कहा उतना ही, आगे नाथ न पाछे पगा इतना ही रखिए बस. और मैं ये सब बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहा हूं, मैं नहीं कहा, मैं कहा केवल बंधन का.
सांड भोगी होता है कहने का मतलब.
अरे मैं भोगी का बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बंधन का बात कर रहा हूं.
त्यागी की तुलना भोगी से कभी नहीं करना चाहिए मेरा.
मैं तुलना नहीं कर रहा हूं तमाल जी, आपको प्रश्न ही नहीं पूछने आता तो मत पूछा करो ना.
दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण तो वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में आते हैं, तो राम जी किस मनवंतर के किस चतुर्युग में आते हैं?
अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ना तो मैं कथा में कहा, कथा में कहा ऐसा. तो प्रश्न वही करना चाहिए जो कथा में कहा जाए, नहीं तो आफ्टर ऑल फॉरगेटफुलनेस अपना तो है ही, तो मैं गलत कुछ कह दूंगा. अच्छा नहीं, फिर आप और कुछ पूछोगे? और कोई प्रश्न? हाँ इधर प्रश्न है. एनीवे तो तमाल जी जो कह रहे थे तो वही बात सही था, ब्रह्मचारियों को सांड नहीं बनना चाहिए, केवल वो पगहा और नाथ वाला इतना याद रखना चाहिए और आगे वाला नहीं.
वृंदावन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है वैष्णव के लिए.
क्या क्या?
वृंदावन का.
हाँ
तो ऐसा अयोध्या का क्यों इम्पोर्टेंस नहीं है?
कौन बोलता है वृंदावन का इम्पोर्टेंस है? इनका बोलते हैं कि वृंदावन का वैष्णवों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, तो अयोध्या का क्यों नहीं? पहला नंबर, वृंदावन समझना चाहिए किसे कहते हैं. भागवतम में वर्णन किया गया कि जहां भगवान का गुणगान होता है वो वृंदावन है. बहुत लोग जाते हैं वृंदावन, वृंदावन जाकर के वहां पर क्या करते हैं? घर बनाते हैं, जाकर बिजनेस करते हैं. वृंदावन वास करना है तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे हम हेरव श्री वृंदावन. ठीक है, तो वृंदावन का महत्व है वैष्णव के जीवन में, उसी प्रकार से अयोध्या का भी है. लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए वृंदावन, और जो राम के भक्त हैं उनके लिए अयोध्या. लेकिन महत्व है, दोनों चिन्मय धाम है. अयोध्या भी चिन्मय धाम है, वैसे है वृंदावन, कोई अंतर नहीं है. आज भी लाखों साधु लोग अयोध्या रहते हैं, कोई अंतर नहीं है. हाँ दो प्रश्न और. आज फास्टिंग नहीं है ना? कल फास्टिंग है. अच्छा मैं समझा कि आज ही फास्टिंग है. आज से प्रिपरेशन. यस आई थिंक बैटरी हैज गॉन डाउन, स्पीक लाउडर.
हरे कृष्णा प्रभु. व्हाट आई वांट टू नो इज सम ऑफ द डिवोटीज, पर्टिकुलरली कॉन्ग्रीगेशनल डिवोटीज, दे टू इन देम सम ऑफ द माताजी डिवोटीज, व्हाट दे डू इज दे चैंट हरे कृष्ण महामंत्र साइड बाय साइड इन ए नोटबुक. दे राइट श्री राम जय जय राम एंड स्टोर द नोटबुक. So will there be confusion in spiritual life if we concentrate on two mantras?
At the time of death, they will not be sure which one to meditate. By that time, death will come and take away. So where will they go? They will remain in confusion. No, we should make up our mind what I want. Radha Krishna Pranamor Jugala Kishore Janama Marane Gati Aar Nahi More. एक पति का बनकर रहो, हजार का मत बनो. ठीक है, वाणी राधा कृष्ण. हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णव केवल कृष्ण के हैं.